ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
पिछले एक वर्ष में 2,00,000 बाल विवाह रोकने में हमें सफलता मिली है और हम 47% से कम करके बाल विवाह को 23% तक ले आए हैं। जब ये सकारात्मक आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो हम इस बात को लेकर आश्वस्त होते हैं कि देश में बाल विवाह की संख्या लगातार घट रही है। लेकिन दूसरी ओर जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NHFS 5 2019-21 का आंकड़ा ये कहता है कि अभी भी 23% तक हमारे पास संख्या है बाल विवाह की कुल विवाह में, तो ये हमें गौर करना जरूरी हो जाता है कि हम इस समस्या को लेकर चिंता जाहिर करें और एक विशेष अभियान के इस मामले में जरूरत समझी गई। और आज ही ऐसा ही एक विशेष अभियान शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। तो बाल विवाह पर और इस अभियान पर आज हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत। कार्यक्रम में बीच बीच में हम अपने संवाददाताओं को भी शामिल करेंगे अलग अलग राज्यों में बाल विवाह की स्थिति को लेकर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को। उन्होंने आज इस अभियान की शुरुआत करते हुए आकाशवाणी से बात करते हुए क्या कहा।
आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और ये महज एक अभियान नहीं, ये कोई 16 दिनों का 15 दिनों का अभियान नहीं, बल्कि ये निरंतर, जैसे हमने सभी से ये आह्वान भी किया है कि हम सब मिलकर ये निरंतर तब तक इसको जारी रखेंगे जब तक बाल विवाह मुक्त भारत ना हो जाए। और जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि अब पिछले एक साल का जो हमने बताया कि लगभग 2,00,000 शादियों को रोका है, तो इस तरह से ये एक बड़ी पहल, बड़ा बदलाव हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट के द्वारा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी बहुत बदलाव हो रहे हैं।
डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत, चर्चा की शुरुआत अगर इसी एक मूल प्रश्न से करें कि देश में बाल विवाह की जो चिंता है, समस्या है, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो बाल विवाह मुक्त अभियान सरकार ने राष्ट्रीय स्तर का शुरू किया है, इसको लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या कहेंगे, आपकी किस तरह से देश में बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में ये अहम अभियान है।
अभी आपने अपने शुरुआती कमेंट्स में कहा कि जब से बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2009 जब से लागू हुआ है, इसे लेकर आज तक भी ऑलरेडी एक बहुत अच्छी फिगर देखने को मिलता है, सामाजिक परिवर्तन ही कह सकते हैं इसको, कि लगभग आधे हो गए जो इसका प्रिवेलेंस है। बट एट द सेम टाइम आधा भी होते हुए भी 23% अगर महिलाएं जो 24 साल से अधिक उम्र के हों, NHFS 5 सर्वे में वे ये कहते हैं कि उनकी शादी जो है 18 साल से कम की उम्र में हो गई है, तो एक चिंता का विषय जरूर है। हर एक बाल विवाह एक लड़की का जो भविष्य को अंधकार में डालने की पूरी संभावना रखता है, पढ़ाई लिखाई और आगे के एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट सब क्वेश्चन में आ जाता है। ऑन द अदर हैंड बायोलॉजिकली भी देखें तो उनकी स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ एक ग्रेव डेंजर में आ जाता है, बिकॉज इट इज नॉट एज टू गेट प्रेगनेंट, 18+ एज में भी, इनफैक्ट उससे भी डिले होना चाहिए प्रेगनेंसी, लेकिन छोटे उम्र में होने से यू कैन अंडरस्टैंड कितना घातक हो सकता है बच्चे के लिए भी, छोटी सी जो बच्ची जो माँ बन जाती है। इन सब दृष्टिकोण से इसको रिपुश करने की बहुत जरूरत थी, इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट। और हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर को एक जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट भी पास किया जिसमें बाल विवाह के संबंध में ही था और उसमें विस्तृत डिटेल में उन्होंने डायरेक्शंस भी दिए हैं सभी स्टेक होल्डर्स, उसमें भी काफी कुछ डायरेक्शंस महिला बाल विकास मंत्रालय को भी तो एग्जीक्यूट करना है। तो इन सभी सिचुएशंस को अगर टोटली देख सकते हैं तो वो बनते हैं, बन जाते हैं इस अभियान के एक तरह से सॉर्ट ऑफ एनर्जी बिहाइंड द अभियान।
एक और प्रश्न ये आता है कि अगर देश में हमारे सामने आंकड़े अभी भी हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बाल विवाह को लेकर 23% तक अभी विवाह हो रहे हैं, तो ऐसे में जब हम आगे आने वाले समय में ये बाल मुक्त अभियान देश भर में लागू करेंगे तो किन किन सेक्टर से, किन किन स्टेक होल्डर्स को शामिल करते हुए इस मामले में सहायता ली जाएगी कि देश भर से आगे आने वाले समय में पूरी तरह से ये जो विसंगति है खत्म हो सके।
बहुत अहम क्वेश्चन है। एक उसी डेटा में ये भी देखने को मिलता है कि ये एवरेज जो है सेम नहीं है पूरे कंट्री में। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जो ये बाल विवाह का प्रिवेलेंस का रेट जो है, दर जो है थोड़ा हायर है देन नेशनल एवरेज। काफी स्टेट्स हैं वो जो थोड़ा ईस्टर्न इंडिया के साइड के स्टेट्स में आते हैं, कुछ इस तरह असम हो गया, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, कुछ हद तक अन्य स्टेट्स भी अबव एवरेज स्टेट नेशनल एवरेज से ऊपर है। तो इनमें फोकस जब करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स की एक फुल इन्वॉल्वमेंट जो कि हमें मिल ही रहा है। फिर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर्स, इनको नियुक्त करने का प्रावधान है इसी अधिनियम के भीतर। बहुत सारे स्टेट्स ने, जैसे हम इमिडिएटली याद आता है तो जैसे कर्नाटका है या फिर असम भी है, वो बहुत व्यापक स्तर पर मतलब बड़े अधिक संख्या में और निचले स्तर तक के अधिकारियों को उन्होंने चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर्स को नियुक्त किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप समझ सकते हैं कि केवल ब्लॉक में, एक ब्लॉक में अगर एक अधिकारी को चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर नियुक्त करेंगे तो वो पूरे ब्लॉक की 100-200 गांव को कैसे वो सॉर्ट ऑफ मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर पंचायत के सेक्रेटरी को, पंचायत के सरपंचों को या वहां के स्कूल के हेडमास्टरों को, इस तरह के अधिकारियों को, ग्राम स्तरीय अधिकारियों को अगर राज्य सरकारें चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर नियुक्त करेंगे तो फिर वो मौजूदा अफसर है, ग्राम स्तर पर होते हैं, तो वहां के क्या हो रहा है, कौन से निर्णय हो रहे हैं वो अवगत रहते हैं और उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि मूल बात मैं जो सभी श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये अधिनियम जो है एक प्रिवेंशन पे फोकस, सामाजिक परिवर्तन पे फोकस, मेन फोकस इसका पिनल एक्शन का नहीं है। क्योंकि जब शादी हो ही चुका होता है तो काफी हद तक नुकसान हो चुका उस बच्चे,
जी जी,
तो वी नीड टू प्रिवेंट इट। तो ये है, तो ये स्टेक होल्डर्स है, साथ में ऑब्वियसली पुलिस विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोग, समाज सेवी संस्थान, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, all of us have to come together.
जी, बिल्कुल.
Religious organizations, I forgot. Main, ये जो religious organizations हैं, because उनके faith leaders जिसको कहते हैं, वो सामने आएंगे और वो कहेंगे कि बिल्कुल हमारे समाज में, हमारे इस particular religion में बाल विवाह के लिए कोई स्थान नहीं है। जब वो कहेंगे तो ये समस्या मेरे ख्याल में overnight भी खत्म हो सकता है।
आपने असम का जिक्र किया तो असम में हमारे पास जो आंकड़ा है, बाल विवाह 2021-22 में 3,225 से घटकर 2023-24 में 627 रह गए हैं, यानी 81% तक की कमी आई है। तो ये सकारात्मक आंकड़ा किस तरह से असम में एक बहुत बड़ा उदाहरण बना है पूरे देश भर के लिए बाल विवाह के मामले में। अपने संवाददाता से जुड़ते हैं जो असम से सीधे हमसे जुड़ रहे हैं, मानस प्रतिम शर्मा
जी।
जी, तो मानस, इस आंकड़े के बारे में बताएं और ये भी जैसा कि इसमें शामिल है कि किस तरह से सख्त कानूनी कार्रवाई से या कानूनों की सख्ती से असम में इस लक्ष्य को हासिल किया गया है और कैसे आप इस पूरे आंकड़े को देखते हैं?
इस पे 2-3 कारण हैं। असम में जैसे आप बता रहे थे कि असम पूरे देशभर में एक सक्सेस स्टोरी बनकर अभी उभरा है बाल विवाह रोकने में। मैं पहले जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे ये तो आमतौर पर नॉर्मल बात है कि पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल सोसाइटी हो, जब भी ऐसा खबर मिलते हैं इस पे एक्शन लिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में असम में 2 मेजर क्रैकडाउन हुए बाल विवाह के खिलाफ और जो CID के आंकड़े हैं उनके मुताबिक 4,000 से अधिक यहाँ पे केस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज बाल विवाह के खिलाफ पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे केस दर्ज हुआ। तो एक जिसको कहते हैं कि फियर ऑफ द लॉ, कानून के लिए डर, शायद ये कानून के लिए लोगों में डर है कि ये गलत है। जैसे अभी सर बता रहे थे क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे हम लोग को बाल विवाह रोकने के लिए 18 साल के नीचे बिल्कुल ही नहीं जाना है, तो ये एक बात है। दूसरी बात जो है अवेयरनेस, जागरूकता के लिए, इसमें हम आकाशवाणी भी जुड़े हैं WCD डिपार्टमेंट के साथ या असम पुलिस के साथ और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हो, एक मल्टी प्रॉन्ग इसमें अप्रोच लिया गया था, अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना कि क्या गलत है क्या सही है। बिल्कुल। थर्ड पार्ट जो है, जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट की तरफ से जो सेंट्रल की स्कीम्स है सब हम लोग जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग SBM के बारे में बोल सकते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट रोकना, लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट बनाना स्कूल में, ये हर जगह हुआ है, असम में भी ये हुआ है। साथ में असम गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक अप्रोच है, अभी कुछ दिन पहले ये स्कीम शुरू हुआ जिसको कहते हैं निजुट मोइना। मोइना मतलब जो PR से हम लोग बच्चे को कहते हैं, निजुट मतलब 10 लाख। तो उस लड़कियों को पैसे देते हैं असम सरकार की तरफ से कि जब ये लोग बड़े होंगे, 18 साल के होंगे, इनको पैसा भर के अकाउंट में जमा होगा। ये एक स्कीम है जैसे ड्रॉप आउट घटाने के लिए, रोकने के लिए। दूसरी बात, जो स्कूल की बच्ची है इन लोग को स्कूटी दिया जाता है, 9-10 के क्लास की लड़कियों को बाइसाइकिल दिया जा रहा है ताकि लड़के ऐसा ना हो कि घर से दूर स्कूल है तो ड्रॉप आउट ना हो। तो ये मल्टीप्रोंग अप्रोच है जिसमें असम उभर के आया है एक सक्सेस स्टोरी बनके। कमल जी
धन्यवाद मानस जी, और मैं वापस डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत जी के पास आना चाहूंगा। अभी हमने जैसा कि अपने संवाददाता से ये पूरी सक्सेस स्टोरी सुनी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब हमने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था तो ये एक शुरुआत थी, एक जो लैंगिक समानता है उसको लेकर बड़ा अभियान था, लेकिन अब दोबारा से हम इस बाल विवाह की रोकथाम का इस अभियान को जब शुरू कर रहे हैं तो ये आगे की दिशा तय करेगा कि किस तरह से देश में लैंगिक अनुपात के साथ साथ अगर हम बाल विवाह समाप्त कर देते हैं तो महिलाओं की और बालिकाओं की जो शिक्षा है, योग्यता है, उसको बढ़ाने में और देश के विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ाने में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, कैसे इस मामले में ये अभियान और ज्यादा व्यापक बन जाता है?
आपने जो बातें अभी कही, कई पहलू हैं इसमें। एक बच्ची की जो सही उम्र पर अगर शादी होती है तो वैसे ही उसकी मानसिक, शारीरिक और उसकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए समय मिला होता है तो वो सही निर्णय ले सक, अपनी निर्णय लेने की काबिल रहेगी, सबसे पहली बात। तो सेक्स सिलेक्शन जो है या फीमेल फिटिसाइड जिसको कहते हैं, भ्रूण हत्या, वो सारे काफी हद तक तो छोटे बच्चों के साथ ही हो सकता है जो खुद समझते नहीं है या अपने खुद के बॉडीली रिलेटेड डिसीजंस ले नहीं पाते हैं। तो एक तो सीधा से सीधा बेनिफिट ऑफ लेट मैरिजेस यही आएगा कि जो बच्चे, जो महिला जो शादी की सही उम्र पे करेगी तो फिर सभी निर्णयों पर उसका नियंत्रण रहेगा, सबसे पहले। दूसरा ये है कि लेट मैरिज के लिए ऑब्वियसली दूसरे बेनिफिट्स ये भी हैं कि जो बहुत सारे अवसर जो सोसाइटी में हैं, अर्थव्यवस्था में जिस तरह से तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे जो अवसर हैं वो महिलाओं के लिए खूब अवसर हैं, बस वो आगे बढ़ के लेने की अवसर उनको मिलना चाहिए। तो लेट मैरिजेस से ये भी होगा, यू नो, बच्चियां पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कॉलेज डिग्रीज लेंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आगे की दे विल सीज द अपॉर्चुनिटी। आफ्टर दैट फिर यू कैन इमेजिन द मल्टीप्लायर इफेक्ट। फीमेल आज की डेट में अगर हमारे जो GDP दर है हिंदुस्तान की, जिससे नापा जाता है कि हम $5 trillion की डॉलर की इकोनॉमी कितनी जल्दी बनेंगे, तो उसके लिए जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि महिलाओं की जो आर्थिक व्यवस्था में जो भागीदारी है। आप सोच सकते हैं कितने बिलियन डॉलर्स की हमारी इकोनॉमी और GDP में फर्क पड़ेगा इस एक चीज से। तो बाल विवाह को रोकना और हर लड़की को, हर बालिका को सही एज पे आने पर शादी के बारे में सोचने का जो ये जो सामाजिक परिवर्तन का मुहिम है, इसके इतने सारे बेनिफिट जो मैं बता रहा हूं।
अब हम जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश के CMPO शिव सिंह वर्मा से। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि जमीनी स्तर पर बाल विवाह को समाप्त करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं।
बाल विवाह को रोकने के लिए क्या क्या समस्या आपको झेलनी पड़ती है फील्ड पे?
देखिए, अभी जो करंट में जो सिनेरियो है, हमारा सोसाइटी का जिस तरह का सिनेरियो है, अभी तक जो मेन चैलेंज है वो है हमारा जो अवेयरनेस है सोसाइटी में, वही नहीं है। तो अगर हम ये सोसाइटी में अवेयर करेंगे इसके दुष्प्रभाव क्या है या इनकी जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो क्या है, वो सब चीजें बताएंगे तो शायद उससे कुछ चेंज आएगा, फिर सोसाइटी में कुछ चेंज आएगा उससे।
अभी क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ चुका है फील्ड पे CMPO के काम पे और जो सरकार की इनिशिएटिव्स चल रही है बाल विवाह और महिला सशक्तिकरण को लेकर?
महिला सशक्तिकरण या दूसरी महिलाओं से एम्पावरमेंट की और भी जो स्कीम्स है उससे लोग अब जागरूक हो रही है सोसाइटी में। एक पॉजिटिव चेंज ये है कि लोग अब चीजों को समझने लग गए हैं, उसके दुष्प्रभावों को भी और उसके जो लीगल इम्प्लीकेशन है उससे हमें क्या हानियां हो सकती है उनको भी लोग समझने लग गए हैं। मैं आपके साथ इंसिडेंट कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आज से 3-4 साल पहले की बात है, तब जो हमारा जो ये रेट था, बाल विवाह का रेट था, ये बहुत ज्यादा था। उसके बड़े रीजन थे, सोसाइटल रीजन था, कहीं कल्चरल रीजन था या फाइनेंशियल रीजन थे, कई फैमिलीज के अलग अलग थे। पर जैसे उन लोगों को पता चला, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहां पे हमने उनको समझाया, कई बार वो क्रामिक भी हो जाते थे जब हम वो चीजें समझाते थे, पर उनको समझाने के और ये अवेयर करने के बाद अब काफी इसमें गिरावट हुई है बाल विवाह में। और दूसरे जो महिलाओं से सशक्तिकरण से जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके चलने से एक तो गिरावट हुई और दूसरा जो इसका सशक्तिकरण है वो एक्चुअल में फील्ड में हो रहा है।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 7 विशेष राज्यों पर फोकस कर रहा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश, और इसमें बहुत से जिले इसमें शामिल हैं। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि इन विशेष राज्यों को शामिल करने के पीछे क्या कारण ये था कि यहाँ पर उच्च दर थी बाल विवाह की, और अगर इन राज्यों पर फोकस किया जाता है तो किस तरह से आगे आने वाले समय में इन राज्यों में संचालित किया जाएगा?
आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिंपल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चरण 5 का डेटा के आधारित, उसी से ये निकलता है जो बाल विवाह का दर। ऑब्वियसली कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे एक सामाजिक समस्या है ये, और निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि हमें फोकस भी वहीं करनी है, और वहाँ के सरकार, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग सतर्क है, सब लोग चाहते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, और कम्युनिटीज भी चाहते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स, इसमें कोई विवाद है ही नहीं, ये बस कोई ये समाज में ये प्रश्न है बचा ही नहीं है कि नहीं नहीं हमें छोटे उम्र में बच्चियों को शादी करना चाहिए, बस ये है उनको एजुकेट करने की बस जरूरत कि भाई इतने सारे अवसर हैं, बहुत सारे स्कीम हैं बच्चों को पढ़ाई में रखने के लिए, बेटी पढ़ाओ, आपने बताया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम चली रहा है ना, निःशुल्क शिक्षा है, अब नेशनल एजुकेशन नीति के तहत कम्प्लीटली निःशुल्क शिक्षा है 10वीं तक अक्रॉस द कंट्री, क्वालिटी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन के लिए कई स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स हैं, कई छात्रावास की स्कीम है, राज्य सरकारों के भी कई स्कीम है कि हर स्टेज में बालिका को कुछ न कुछ उनको लाभ मिलता है। तो इन्हीं इन जिलों में यही फोकस लेके चलेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज में जो अभी ये अवेयरनेस की कमी कह लीजिए या फिर मोटिवेशन की कमी है, वहां पे जाके उनकी काउंसलिंग और अवेयरनेस की हम कैंपेन चलाएंगे तो निश्चित तौर पर आई एम वेरी होपफुल कि देयर विल बी फैंटास्टिक रिजल्ट।
तो हम राजस्थान चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी के पास। जितेंद्र जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि 7 राज्यों पर फोकस है इस अभियान के तहत, राजस्थान भी जिसमें से अहम है, तो कैसे आप देखते हैं राजस्थान में अभी आपके पास क्या जानकारी है कि बाल विवाह को लेकर जो समस्या है वो कितनी बड़ी है, और जो सकारात्मक परिणाम भी हैं तो क्या वो भी आपके पास है कि कितनी हद तक इसमें कमी आई है, और जब ये अभियान लागू होगा तो किन लक्ष्यों को लेकर यहाँ पर इस अभियान को रखा जाएगा?
देखिए, पिछले 2 दशकों के अंदर बाल विवाह को लेकर जो राजस्थान की स्थिति थी उसमें काफी बदलाव आया है। पहले व्यापक रूप में बाल विवाह हुआ करते थे, आखा तीज जो कि अप्रैल मई में होता है यहाँ पर एक त्योहार, उसमें बहुत बड़ी संख्या में बाल विवाह हुआ करते थे, लेकिन सरकार के प्रयास, पुलिस के प्रयास, प्रशासन के प्रयास, सबके समन्वित प्रयासों से और लोगों में जागरूकता का स्तर भी बढ़ा है, लड़के और लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो उनको भी एक तरीके से वो भी मुखर हुए हैं कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे। तो पिछले 2 दशकों के अंदर तस्वीर में काफी बड़ा बदलाव आया है, और अब यदि पुलिस के जो मामले हैं या प्रशासन के पास जो शिकायतें आती हैं वो हद तक कम हुई है, लेकिन अभी भी कई सारे जिले ऐसे हैं, कई पिछड़े इलाके ऐसे हैं, कई समुदाय ऐसे हैं जो कि मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिनके अंदर जागरूकता की कमी है और वहां पर अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। तो ये जो ड्राइव चलेगी, अब ये जो आज महाअभियान स्टार्ट हुआ है, इस अभियान के तहत यही किया जा रहा है कि किस प्रकार हम वंचित समुदाय है, ऐसे तबके हैं, ऐसे समुदाय के जो हमारे समुदाय हैं, समाज के, या ऐसे इलाके हैं जो अभी भी जिनमें अवेयरनेस की कमी है, जिनके अंदर अभी भी जिनको पता नहीं है कि बाल विवाह के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उनके बीच जाना, उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना और उनके व्यवहारगत परिवर्तन उनकी उनके अंदर लाना, ये मुख्य प्रयोजन है इस पूरे अभियान का। और राजस्थान में भी इसके लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है, और इसमें सभी विभागों को, कुछ अन्य विभाग भी हैं जैसे पुलिस तो है ही, महिला अधिकारिता विभाग है, बाल विकास विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, इनको भी किस प्रकार हम अपने साथ संयोजित करें, इस प्रकार की रणनीति बनाई गई है। आज भी लगभग सभी पंचायतों पर जो महिला और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो कि समाज के बीच रहती है, और वो जाके एक अपने जहां पर पिछड़े समुदाय है वहां पर जाके उस मैसेज को कन्वे करती हैं।
डॉक्टर प्रीतम, हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसे हमारे संवाददाता आखा तीज का जिक्र कर रहे थे यानी अक्षय तृतीया, इस पर्व के अवसर पर ज्यादा बाल विवाह को होते हुए देखा गया है बीते दशकों में, तो इसको लेकर 15 दिन का एक इस अवसर पर विशेष सिम्बॉलिक पखवाड़ा भी मनाया जाएगा, और साथ में एक और इसमें उद्देश्य में देख रहा था कि ग्रामीण स्तर पर, पंचायत के स्तर पर विवाह का पंजीकरण भी कराने पर जोर दिया जाएगा, तो ऐसे प्रयास कैसे आने वाले समय में विवाह के एक औपचारिक डेटा को हमारे सामने लाएंगे और बाल विवाह की रोकथाम को लेकर इससे और ज्यादा मदद मिलेगी?
मैं जितेंद्र जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ, जो 20 इयर्स मैंने राजस्थान में ही सेवा दी है दिल्ली आने से पहले, तो वहां पे जो लॉट ऑफ वर्क जो हुआ है बिकॉज इस तरह से प्रथा वहां पे प्रचलित था, इस तरह से यू नो लार्ज स्केल पर कुछ ऐसे फिक्स डेट्स पे कैलेंडर पे तरह सामाजिक एक परिपाटी थी शादी होनी चाहिए, उसी वजह से सबसे ज्यादा काम भी वहीं हुआ है। तो वहां पे भी सामाजिक तौर पर यू नो हर पर्टिकुलर कम्युनिटी में, हर रीजन में, राजस्थान में की भी हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि प्रति जिले में आप चले जाइए तो वहां पे हर समुदाय के ऐसे प्रोग्रेसिव प्रगतिशील लोग खड़े हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ये प्रथाएं खत्म होंगी, एक बात तो ये है। दूसरा, अब आपने जो बात पूछा तो मतलब कहने का अर्थ है कि वी आर वेरी होपफुल कि इस तरह के प्रथाएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। सेकेंड, कि हमारे जो कैंपेन की मॉनिटरिंग के लिए हमने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, माननीय मंत्री महोदय जी ने इसको लॉन्च किया, बाल व्यापार मुक्त भारत का मॉनिटरिंग के लिए। उस पोर्टल का अर्थ सिर्फ इतना था क्योंकि हमने एक तरह से सहजता बनाई है कि जो काम होता ही है वैसे भी सबके एफर्ट से इसको कंप्यूट करने के लिए ताकि एक व्यवस्था बैठ जाए। सो वी आर ट्राइंग कि आपने कितने लोगों को प्रेरित किया, जब कोई सूचना मिली उस ग्राम पंचायत ब्लॉक तो क्या कार्रवाई की गई, क्या आप वहां गए, क्या आप उनके समझाइश किया, तो कितने आपने समझाइश से रोक पाए, जो कि बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। कई बार समझाइश जब नहीं होता है तो थोड़ा हमें पुलिस एक्शन से भी रोकना पड़ता है, तब जाके लोगों को थोड़ी समझ में आती है। क्योंकि बच्ची का देखो, जब भविष्य बचाने का दायित्व तो है ही हमारा, बिकॉज इट्स रिटन इन द लॉ, सो उसकी कंप्यूटेशन हो सकता है, मेंटेन अ रिकॉर्ड। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, वन ऑफ द बेस्ट वेज जिसको हम एनकरेज कर रहे हैं इस कैंपेन में, वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोकल बॉडीज, चाहे ग्रामीण लोकल बॉडीज हो या अर्बन लोकल बॉडीज हो, वो मैरिज को रजिस्टर करने का प्रथा शुरू एनकरेज कर रहे हैं, रजिस्टर करें। अभी कानूनन उसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक्ट में यू नो अभी इट इज द प्रोविजन इज नॉट देयर मैंडेटरी, बट लोकल बॉडीज वो कर ही सकते हैं, कर भी रहे हैं, उनके पास पावर है लोकल बॉडीज में, चाहे वो पंचायत हो या नगर पालिका है, दे कैन डू दैट। तो वो एनकरेज कर रहे हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे तो फिर ऑब्वियसली दो बार सोचेंगे लोग कि हमें इसको हर कोई दूसरे सरकारी कुछ भी बेनिफिट के लिए हमें तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा, तो इट इज बिकम्स अ बैरियर। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे हमें पोर्टल बनाया है, और इससे वो जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ेगा तो फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो सकता है हर ग्राम पंचायत से, हर ब्लॉक से, हर जिले से।
पश्चिम बंगाल से कल्याण लाहा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कल्याण, आप हमें बताएं कि जो ये विशेष अभियान लागू किया जा रहा है पूरे देश भर में, तो पश्चिम बंगाल में किस तरह से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्रगति को देखा जा रहा है, आगे वाले समय में किस तरह से पश्चिम बंगाल में भी इस अभियान के हमें सफल परिणाम देखने को मिलेंगे?
देखिए, जैसा पश्चिम बंगाल का स्थिति है, इसमें राज्य सरकार बहुत पहले से काम कर रहा है केंद्रीय सरकार के साथ समन्वय रख के, और एक जो रिसेंट डेवलपमेंट है, जो ब्लॉक में जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर से WCD डिपार्टमेंट का, तो उनको अभी इसी महीने चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर किया जा चुका है, वो भी वो देखेगा ब्लॉक लेवल में। और जो पश्चिम बंगाल में और जो स्कीम जो चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए अभी चल रहा है, कन्याश्री, रूपश्री, जैसे का कन्याश्री स्कीम के अंदर है, जो स्कूल ड्रॉप आउट रोकने के लिए क्लास 8 से 12 तक स्टेट गवर्नमेंट पैसा देता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंडर, जो एक स्टूडेंट को जाता है, और इसके बाद आप जो 18 इयर्स हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को एक कालीन पैसा भी मिलता है। और जो और एक बात है, जो अभी स्टेट में ब्लॉक लेवल जो वीडियोज है वो भी काम कर रहे हैं, और कोई भी अगर वो खबर अगर मिलता है कि कोई जगह में चाइल्ड मैरिज का अभी चल रहा है, बच्ची को शादी देने के लिए कोशिश कर रहा है, तो पुलिस तुरंत पहुंच जाता है और लीगली जो जो स्टेप्स होता है वो लिया जाता है। और अभी और एक चीज है, जो 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, अभी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आ गया है, तो DM भी अभी वो डायरेक्ट देख रहा है, अगर कोई कंप्लेन आए तो तुरंत एक्शन होता है।
जी डॉक्टर प्रीतम, हम आपसे अंत में ये समझना चाहेंगे, जैसे हमारे पास आंकड़े हैं कि देश में जो हमारा सेक्स रेशियो था वो पिछले दशक में 918 से बढ़कर 930 हो गया है, महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी की बात करें तो ये भी हमारे पास सकारात्मक आंकड़ा है कि 33% से बढ़कर भागीदारी 41% तक हो गई है। तो ये जो सकारात्मक आंकड़े हैं, अगर पूरी तरह से देश में बाल विवाह खत्म होता है तो किस तरह से इन आंकड़ों को और बढ़ते हुए देखा जाएगा? और हम जबकि विकसित भारत से इस अभियान को जोड़कर देख रहे हैं कि 2047 तक अगर हमें विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए इस समस्या को दूर करना बहुत जरूरी है तुरंत प्रभाव से, तो ऐसे मामले में भी अभियान और कैसे विशेष हो जाता है?
आपने अच्छी तरह से सम अप करने की कोशिश किया है अंत में, और हमारे साथियों ने जो वेस्ट बंगाल से राजस्थान से ने भी फीडबैक दिया, अब ये देख सकते हैं कि कितने ऐसे सपोर्टिव ढांचा राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो बनाने की कोशिश तो की। अभी हमारे मित्र जो वेस्ट बंगाल से बोल रहे थे, तो चाइल्ड लाइन 24 घंटे अवेलेबल है। आज के हमारे जो फंक्शन हुआ जिसमें हमने इस अभियान को लॉन्च किया हमारे मंत्री महोदया के उपस्थिति में, वहां पे भी जो बच्चियां जुड़े हम, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं चाइल्ड लाइन के मदद से अपने शादियों को रुकवाने के सफल रहे। जब उनके माता पिता या उनके नजदीकी रिश्तेदारों का मदद नहीं मिल सका, चाइल्ड लाइन की मदद से वो अपने शादी को रुकवा सके। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मदद से हो पाए, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर्स के मदद से, नजदीकी पुलिस ऑफिसर्स के, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, और ये सारी व्यवस्था है। आज की डेट में 112 एक व्यवस्था है, सिंगल कॉल इमरजेंसी कॉल नंबर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा चलाया जाता है। आपके एक इमीडिएट सपोर्ट 15-20 मिनट्स के भीतर एवरेज टाइम रिस्पांस टाइम है कि आपको सेफ्टी के लिए एक सेफ्टी सिस्टम बनाया गया है। तो ये मैं सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ढांचे। फिर व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर ऑप्शंस कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, तो फिर बहुत सारे स्कीम है राज्य सरकार के भी और केंद्र सरकार, सुकन्या समृद्धि योजना, विज्ञान ज्योति, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय मिशन, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो एंडलेस स्किल इंडिया मिशन, तो ये इतने सारे जब अवसर है, मैं इसलिए इनको गिना रहा था संक्षिप्त में, बिकॉज श्रोताएं जो सुन रहे हैं
जी।
हमारा काम ये भी है कि उन सभी माता पिताओं को जहां तक पहुंच रहा है डिस्कशन, उनको लगे कि ऐसे वो दिन गए
जी।
कि आपकी बच्ची को कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं कैसे बच्चे को बड़ा करूं, ये मेरे ऊपर बोझ है, ये किसी और घर पे जाएगी, अल्टीमेटली उसको चूल्हा और किचन और बच्चों को रेस करने के अलावा कुछ नहीं। ये समय आ गया कि ये सारे विचारों को खत्म करें,
बिल्कुल,
बिकॉज देयर इज सो मच अवेलेबल इन अराउंड अस, और हम लोगों का, चाहे प्रशासन हो, चाहे समाज सेवी संस्थान हो, चाहे प्रेस हो, चाहे हम सब लोग मिलके स्टेक होल्डर्स जिसको आप कह रहे थे, हमारा ये दायित्व है कि हम गांव-गांव तक ये चीज पहुंचाएं कि ये सारा आपकी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम आपको हेल्प करेंगे कि वो व्यवस्थाएं आपके बच्चियों को मिल सके। ये इस अभियान का मूल उद्देश्य होना चाहिए
जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हमारे संवाददाताओं का हम धन्यवाद करते हैं कि इस चर्चा में शामिल हुए और एक सार्थक चर्चा हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। आप सभी का धन्यवाद।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।